नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। द क्लब, जोशुआ रॉबिन्सन और जोनाथन क्लेग की खेल, व्यवसाय और सांस्कृतिक इतिहास पर आधारित पुस्तक है। यह बताती है कि इंग्लैंड का शीर्ष फुटबॉल ढांचा, जो 1980 के दशक में जर्जर मैदानों, हिंसा, सीमित प्रसारण और कमजोर वित्तीय व्यवस्था से जूझ रहा था, कैसे 1992 में प्रीमियर लीग बनने के बाद विश्व का सबसे मूल्यवान घरेलू फुटबॉल उत्पाद बन गया। पुस्तक का विषय केवल मैच, खिलाड़ियों या क्लबों की उपलब्धियां नहीं है। इसका केंद्र उन मालिकों, प्रशासकों, प्रसारकों और निवेशकों के फैसले हैं जिन्होंने खेल को मनोरंजन उद्योग में बदला। व्यापक साक्षात्कारों के आधार पर लेखक टेलीविजन अधिकारों, प्रायोजन, वैश्विक विपणन और विदेशी पूंजी के बीच संबंध को स्पष्ट करते हैं। साथ ही वे एक कठिन प्रश्न उठाते हैं, जब किसी स्थानीय समुदाय की परंपरा विश्वव्यापी कारोबार बनती है तो लाभ किसे मिलता है और उसकी सांस्कृतिक कीमत कौन चुकाता है। इसलिए यह पुस्तक प्रीमियर लीग के उदय का इतिहास होने के साथ खेल के व्यवसायीकरण का विश्लेषण भी है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रीमियर लीग का जन्म, पुराने फुटबॉल ढांचे से व्यावसायिक अलगाव। पुस्तक का आरंभ उस दौर से होता है जब अंग्रेजी फुटबॉल लोकप्रिय तो था, लेकिन आधुनिक, सुरक्षित और लाभकारी उद्योग नहीं था। क्लबों की प्रशासनिक शैली अक्सर स्थानीय और अनौपचारिक थी। स्टेडियमों की दशा खराब थी। दर्शक हिंसा ने खेल की छवि को नुकसान पहुंचाया था और प्रसारण से होने वाली आय सीमित थी। इस पृष्ठभूमि में बड़े क्लबों और प्रभावशाली अधिकारियों ने समझा कि उनकी लोकप्रियता का आर्थिक मूल्य मौजूदा लीग व्यवस्था में पूरी तरह नहीं मिल रहा है। प्रीमियर लीग का गठन केवल नाम या प्रतियोगिता बदलना नहीं था, यह राजस्व के नियंत्रण, क्लबों की सामूहिक सौदेबाजी और टेलीविजन को केंद्रीय साझेदार बनाने का संस्थागत निर्णय था। पुस्तक दिखाती है कि अलग लीग बनाने के पीछे खेल की गुणवत्ता बढ़ाने की इच्छा और अधिक आय अपने पास रखने की महत्वाकांक्षा दोनों मौजूद थीं। यह परिवर्तन इसलिए निर्णायक बना क्योंकि क्लबों ने फुटबॉल को सप्ताहांत की स्थानीय घटना के बजाय नियमित, पैकेज किए जा सकने वाले मीडिया उत्पाद की तरह देखना शुरू किया। लेखकों का संकेत यह है कि संस्थागत ढांचा बदलने पर खेल का पूरा आर्थिक व्यवहार बदलता है। आय बढ़ती है, पर शक्ति भी उन संस्थाओं के पास अधिक केंद्रित होती है जिनके पास पहले से दर्शक, प्रतिष्ठा और बाजार क्षमता है। दूसरा, टेलीविजन अधिकारों ने मैचों को वैश्विक मनोरंजन उत्पाद बनाया। द क्लब में प्रसारण अधिकार प्रीमियर लीग की आर्थिक क्रांति का प्रमुख तंत्र है। पहले फुटबॉल का मूल्य मुख्यतः टिकट बिक्री और स्थानीय समर्थन से जुड़ा था। टेलीविजन सौदों ने इस समीकरण को बदल दिया क्योंकि एक मैच अब स्टेडियम की सीटों तक सीमित नहीं रहा। उसे अलग समय पर दिखाया जा सकता था, अनेक देशों में बेचा जा सकता था और विज्ञापन, सदस्यता तथा प्रायोजन के साथ जोड़ा जा सकता था। पुस्तक यह रेखांकित करती है कि प्रसारण कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा ने अधिकारों की कीमत को तेजी से बढ़ाया। उस आय ने क्लबों को बेहतर खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सुविधाओं और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार में निवेश करने की क्षमता दी। बदले में खेल की गुणवत्ता और दृश्य आकर्षण ने अगला प्रसारण सौदा अधिक मूल्यवान बनाया। यह एक आत्म सुदृढ़ चक्र था, लेकिन लेखक इसके परिणामों को एक तरफा प्रगति नहीं मानते। प्रसारण की जरूरतों के अनुसार किकऑफ समय बदलना, सदस्यता आधारित पहुंच और दूरस्थ दर्शकों को प्राथमिकता देना स्थानीय मैच दिवस अनुभव को प्रभावित कर सकता है। पुस्तक इसलिए मीडिया अधिकारों को केवल वित्तीय सफलता की कहानी नहीं, बल्कि फुटबॉल के समय, पहुंच और दर्शक संबंधों को बदल देने वाली शक्ति के रूप में देखती है। तीसरा, विदेशी मालिकों की पूंजी ने प्रतिस्पर्धा और नियंत्रण दोनों बदले। पुस्तक के सबसे महत्वपूर्ण आयामों में से एक विदेशी मालिकों का आगमन है। रूसी धन कुबेरों, अमेरिकी निवेशकों और खाड़ी क्षेत्र से जुड़े मालिकों सहित अनेक नए स्वामियों ने अंग्रेजी क्लबों में पूंजी, वैश्विक नेटवर्क और अलग अलग रणनीतियां लेकर प्रवेश किया। कुछ के लिए क्लब निवेश और व्यावसायिक विस्तार का माध्यम था, कुछ के लिए प्रतिष्ठा, प्रभाव या व्यापक छवि निर्माण का साधन। लेखकों के अनुसार इस पूंजी ने खिलाड़ियों के वेतन और स्थानांतरण शुल्कों की सीमाएं बदल दी। जिन क्लबों के पास असाधारण वित्तीय समर्थन था, वे तेजी से अपनी टीमों और ढांचे को उन्नत कर सके। इससे मैदान पर प्रतिस्पर्धा अधिक आकर्षक हुई, लेकिन संसाधनों की असमानता भी गहरी हुई। पुस्तक इस बात पर ध्यान देती है कि क्लब का स्वामित्व साधारण कंपनी अधिग्रहण जैसा नहीं है। क्लब स्थानीय पहचान, समर्थकों की स्मृति और सामुदायिक भावनाओं से जुड़ा संस्थान होता है, इसलिए मालिक के वित्तीय लक्ष्य और प्रशंसकों की अपेक्षाएं अक्सर टकराती हैं। विदेशी स्वामित्व को लेखक न तो स्वतः हानिकारक कहते हैं न अनिवार्य समाधान। वे दिखाते हैं कि जब धन का स्रोत, उद्देश्य और जवाबदेही अस्पष्ट हों, तब खेल की विश्वसनीयता तथा क्लब की दीर्घकालिक स्थिरता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है। चौथा, मैनचेस्टर यूनाइटेड मॉडल, ब्रांड, प्रायोजन और प्रशंसक बाजार। द क्लब यह समझाता है कि प्रीमियर लीग की सफलता केवल सामूहिक प्रसारण आय का नतीजा नहीं थी। बड़े क्लबों ने बहुत पहले यह पहचान लिया था कि उनकी पहचान स्वयं एक विश्वव्यापी ब्रांड बन सकती है। विशेष रूप से मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लबों ने मर्चेंडाइज, प्रायोजन, अंतर्राष्ट्रीय दौरों और मीडिया उपस्थिति को व्यवस्थित राजस्व स्रोतों में बदला। क्लब की जर्सी, प्रतीक, खिलाड़ी और इतिहास को ऐसे उत्पादों से जोड़ा गया जिन्हें दूर बैठे समर्थक भी खरीद सकते थे। इससे समर्थक की परिभाषा बदल गई। अब वह केवल स्टेडियम आने वाला स्थानीय व्यक्ति नहीं, बल्कि दुनिया के किसी भी हिस्से में मैच देखने और क्लब से जुड़ी वस्तुएं खरीदने वाला उपभोक्ता भी था। यह विस्तार वित्तीय रूप से शक्तिशाली था, क्योंकि ब्रांड आय खेल के परिणामों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहती। फिर भी पुस्तक बताती है कि इसी मॉडल ने बड़े और छोटे क्लबों के बीच अंतर बढ़ाया। जिस क्लब के पास पहले से वैश्विक पहचान थी, उसके लिए प्रायोजक और नए बाजार पाना आसान था। छोटे क्लबों को मुख्यतः प्रसारण हिस्से और सीमित स्थानीय आय पर निर्भर रहना पड़ सकता था। इस तरह व्यावसायिक कौशल ने खेल के पारंपरिक प्रतिस्पर्धी संतुलन को प्रभावित किया। अंत में वैश्विक विस्तार और अंग्रेजी फुटबॉल की स्थानीय आत्मा का तनाव। पुस्तक का व्यापक निष्कर्ष यह है कि प्रीमियर लीग की असाधारण सफलता के भीतर एक स्थायी तनाव मौजूद है। लीग को विश्वभर में लोकप्रिय बनाने के लिए उसे सुलभ, चमकदार और व्यावसायिक रूप से अनुकूल होना पड़ा, लेकिन अंग्रेजी फुटबॉल की ताकत उसके स्थानीय क्लबों, पीढ़ियों से बने समर्थन, पड़ोस की प्रतिद्वंद्विताओं और मैदान की विशिष्ट संस्कृति में भी रही है। बढ़ती टिकट कीमतें, आतिथ्य क्षेत्र का विस्तार, बदले हुए मैच समय और वैश्विक दर्शक बाजार पर जोर पारंपरिक समर्थकों को यह महसूस करा सकते हैं कि खेल उनके लिए कम सुलभ होता जा रहा है। लेखक इस विरोधाभास को सरल नैतिक निर्णय में नहीं बदलते। व्यावसायिक आय ने बेहतर स्टेडियम, अधिक पेशेवर संचालन और विश्वस्तरीय प्रतिभा को संभव बनाया। फिर भी यही आय क्लबों को ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकती है जिनमें स्थानीय प्रशंसक की प्राथमिकता पीछे रह जाए। पुस्तक का उपयोगी बिंदु यह है कि किसी खेल लीग की सफलता को केवल मूल्यांकन, वेतन या प्रसारण पहुंच से नहीं मापना चाहिए। उसकी वैधता इस पर भी निर्भर करती है कि क्या वह उन समुदायों से संबंध बनाए रखती है जिन्होंने उसे आरंभिक अर्थ और निष्ठा दी थी। निष्कर्ष में, द क्लब उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो प्रीमियर लीग को केवल फुटबॉल प्रतियोगिता नहीं बल्कि आधुनिक खेल व्यवसाय के प्रभावशाली उदाहरण के रूप में समझना चाहते हैं। फुटबॉल समर्थकों को इसमें अपने परिचित क्लबों के पीछे चलने वाले वित्तीय और प्रशासनिक बदलावों का संदर्भ मिलता है। खेल प्रबंधन, मीडिया, विपणन और निवेश में रुचि रखने वाले पाठकों को यह समझने में मदद मिलती है कि प्रसारण अधिकार, ब्रांड निर्माण और मालिकाना संरचना मिलकर किसी लीग का मूल्य कैसे बढ़ाते हैं। पुस्तक का बौद्धिक लाभ यह है कि यह सफलता के आंकड़ों के साथ उसके सामाजिक परिणामों को भी रखती है। पाठक देख पाता है कि अधिक पैसा बेहतर प्रतिस्पर्धा और सुविधाएं ला सकता है, पर असमानता, पहुंच और पहचान के प्रश्न भी पैदा करता है। समान विषय की कई खेल पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान अंदरूनी पहुंच और संस्थागत निर्णयों पर ध्यान है। यह केवल किसी एक क्लब, खिलाड़ी या मौसम का इतिहास नहीं बनती। इसके बजाय यह उन लोगों और सौदों का व्यापक चित्र प्रस्तुत करती है जिन्होंने पूरे अंग्रेजी फुटबॉल पारिस्थितिकी तंत्र की दिशा बदली। वित्तीय विवरणों और अनेक व्यक्तियों के कारण कुछ हिस्से घने लग सकते हैं, लेकिन यही विस्तार इसकी विश्वसनीयता और उपयोगिता बढ़ाता है। अंततः यह पुस्तक बताती है कि खेल का वैश्वीकरण एक आर्थिक उपलब्धि होने के साथ शासन, संस्कृति और समुदाय से जुड़ी निरंतर बहस भी है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉशुआ रॉबिन्सन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।